परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
अपनात्माओं, अब यहां ये अनुवादकर्ता शर्मा गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, तो यहां तक टाड़ मटोल कर गया। परमात्मा कहते हैं चोर चोरावे तुम्बड़ी गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवा, सच्चाई छनी ना। किसी चोर ने किसी दूसरे का तुम्बा चुरा लिया सूखा, एक फुटबॉल जैसा होया करे, इतना लंबा यू समझ लो सीताफल जैसा, पेठे जैसा, और वो सूखने के बाद बिल्कुल खाली हो जाता अंदर से। साधु लोग उसको एक तारा भी बनाते थे, उसमें जल भी रखते थे, और वो चोर छुपाने के लिए जल में बढ़ गया और वो नीचे छोड़ा हुआ। वो बाहर आगे बैठे, इतने थोड़ी देर में वो ऊपर आ गए, नूर चमक जा, वो फिर दबा का आवे, वो थोड़ी सी देर में आके ऊपर फिर वो नूर दिख कीटे तो ऊपर निकला। तो कहते हैं इन्होंने इस सच्चाई को छुपाने की पूरी कुचेष्टा की, लेकिन ये छुपा नहीं सके। अब देखो यही शिव पुराण आपको दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 24 पे एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का झगड़ा हो गया इस बात पे। ब्रह्मा जी कहने लगा मैं तेरा बाप हूं, तू मेरे से उत्पन्न हुआ है, मैंने सारे जगत की रचना की है। और विष्णु जी कहने लगे मैं तेरा पिता हूं, तेरा जनक हूं, तेरी उत्पत्ति मेरी नाभि कमल से हुई है। इस बात पर दोनों का काफी युद्ध हो गया। इस काल रूपी ब्रह्म ने, इनके पिता ने, ये गुप्त रहता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, अपने ओरिजिनल रूप में, ओरिजिनल वास्तविक रूप में। जैसे ब्रह्मा विष्णु का आपस में विवाद हुआ तो शिव रूप में आ गया, कहीं पर विष्णु और शिव का विवाद होता है तो ये ब्रह्मा के रूप में खड़ा हो जाता है। तो ये समझे नहीं पाए कौन है ये, के सांग है। तो अब परमात्मा ना के बताए इसके सारे षड्यंत्र का बांडा फोड़ कर दिया। अब क्या हुआ, ये काल आके खड़ा हो गया। पहले इसने सतम पिलर डाल दिया बीच में, जिसको लिंग बोलते हैं, तेजो में लिंग खड़ा कर दिया, पिलर बहुत बड़ा। तो दोनों युद्ध करना बंद कर गए ब्रह्मा और विष्णु जी, आश्चर्य में पड़ गए कि इतना लंबा कहां से आ गया अचानक। फिर उसको कोई ऊपर न एक नीचे न इसमें ढूंढने लग गए। लंबी कथा है, हम सॉल्व करेंगे भी। तो उसी समय ये काल आ गया वहां पर शिव रूप में, इन दोनों को समझा कि तुम भगवान नहीं हो और तुम अपने आप को भगवान मान बैठे। तो फिर इन्होंने प्रश्नोत्तरी की, वो आगे दिखाते हैं। हम अपने मतलब की वस्तु लेते हैं। ये है 24 पृष्ठ श्री विष्णु पुराण और विद्वेश्वर संहिता, और इसमें ये ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हुआ, इनके बीच में ये सतम खड़ा कर दिया। इसके बाद फिर काल जब ब्रह्म आ गया इनके सामने शिव रूप में, इनकी वार्ता हुई। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि पांच कृत्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक उन्हें उनके विषय में बता रहा हूं। ये सारा कुछ हम अपने मतलब की बात लेंगे। ये आपने पढ़ा 35 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता संक्षिप्त शिव पुराण 26 पृष्ठ पे। अब यहां हम आ जाते हैं। अब ये काल कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीति नामक दो कृत प्राप्त किए। अब स्पष्ट है ये बोलने वाला तीसरा है कोई, वो कह रहा है कि पुत्रों, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है पुत्रों तुमने स्वयं अपनी तपस्या करके मुझसे ये दो जॉब प्राप्त की है, दो पोस्ट प्राप्त की है, कौन सी, सृष्टि और सतीति की। अब आगे देखो, दो कृत प्राप्त किए हैं सृष्टि और सतीति नामक, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीति नामक दो कृत प्राप्त किए हैं, ये दोनों तुम्हें बड़े प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप यानी मेरी ही सकल के रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, ने दो अत्यंत कृत सहार और त्रोभाव मुद्द से प्राप्त किए हैं। अब जो दास कंसेप्ट क्लियर करना चाहता था वो ये हो गया कि ये चार और हैं, ये बोलने वाला पांचवा है, महेश्वर रुद्र ब्रह्मा और विष्णु इनका पिता है यो काल, यो पांचवा न्यारा है। इति सिद्धम कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी कौन है, काल रूपी ब्रह्म। अपने आत्माओं 600 वर्ष पहले भगवान कबीर साहब ने कहा था, अब मैं तुमसे कहूं चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, मां अष्टंगी पिता निरंजन ये जमदारुण वंशन अंजन, पहले की निरंजन राई पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा देव निरंजन तन मन लोभा। अब बताते हैं, निरंजन की ने भोग विलासा माया को रही तब आशा, तीन पुत्र अष्टंगी जाए ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। कति सिंपल लैंग्वेज में मालिक ने ये सूक्ष्म वेद में बता रखा है कि इस काल रूपी ब्रह्म सर्व पुरुष की और दुर्गा के संयोग से दुर्गा को आशा रही, प्रेग्नेंट हुई, फिर उन तीन पुत्रों की उत्पत्ति की, कति क्लियर कर दिया। और फिर मालिक ने एक शब्द और बोला, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो नासवान है और इनकी भक्ति करने से वो पूर्ण मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, ये आप जन्मते मरते हैं। तो इसके लिए इन्हीं पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित करेंगे आपके लिए। पहले तो ये प्रमाणित करते हैं ये तीन गुण क्या है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। वैसे तो बहुत बार आ चुका है, फिर भी पुण्यात्मा ये अज्ञान भी हमारे अंदर हजारों वर्षों से फीड किया गया, झूठा लगातार लगातार फीड कर दिया, हम यहां तक भर दिए इस अज्ञान से। अज्ञान सुनते हैं तो हमें अंदर जगह नहीं, लेकिन ये ऐसा ज्ञान है कि अपनी जगह बनाएगा और उसको बाहर फेंक देगा उठा करके। अब देखना मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट किया है, ये अपने पवित्र पुराण सदग्रंथ हैं जिनको हम सर्वधारिय मानते रहे, पढ़ते रहे और खरीदते रहे। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, प्रकाशक एम मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, 123 पृष्ठ पे। अब यहां से शुरू करेंगे 122 से हम, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, यहां देखिएगा। मार्कंडेय जी बोले, ये मार्कंडेय जी का ही आगे ज्ञान है, यहां आ जाते इसके सामने हम। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है, ये ही तीन देवता है और ये ही तीन गुण है। वैसे तो पुण्यात्माओं कहते हैं बुद्धिमान को संकेत गणाओ है, बहुत होता है, फिर भी क्योंकि हम बहुत दिनों से रंगे पड़े हैं, कहीं मन में थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर ना हुआ तो यु काल फिर स्थान बना जाएगा आपके अंतःकरण में। लेकिन दास ऐसी जगह छोड़ना को ना कि यो फिर समा जाए आपके अंदर। ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत, ये प्रथम भाग, ये कहां से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सहमात्यम, खेमरा श्रीकृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई 4। अब हम इसके यहां आते हैं। ये है अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है सप्रारंभ ते, तीसरा स्कंद प्रारंभ। इसके हम 11 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, ये 11 पृष्ठ है और ये तीसरा स्कंद है भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5। ये अध्याय 5 का ये 7वां श्लोक यहां समाप्त हुआ और 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर कहते हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। अब संस्कृत भी पढ़ेंगे हम। 7वां ये समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर कहते हैं, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके, यदि दया धर्मना, यदि आप दया युक्त हो, कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया अंबिके यानी दुर्गा, हे माता, विहित तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया, सोहित क्यों सतोगुण हरि और विष्णु को क्यों सतोगुण बना दिया, इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब ये दास आपको पवित्र श्रीमद भगवत गीता के अंदर दिखाएगा, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो है मुक्ति। तभी तो हमारे सारे पूर्वज भूत बनवा दिए न ज्ञानिया ने, और फिर हमारे से श्राद्ध कटवाओ तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में भूखे हैं, न कर लियो, स्वर्ग में जब कुछ है नहीं वो स्वर्ग कहाँ हो गया जिसमें भूखे मरे हमारे पूर्वज, बोला स्वर्ग भेज दिए, गति कर दी उनकी सारे क्रिया कर्म करो पाछे, और फिर न कहो भूखे हैं उनको ये दान करो, किसा मूर्ख बना रखा था इन्हें। अब ये देखिएगा श्रीमद भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का, जयदयाल गोविंद का, इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 के 1, 2, 3 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन अब ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूं जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। देखना अथ सप्तमोध्याय 7वां अध्याय प्रारंभ, श्री भगवान उवाच, इसमें कितने भी श्री कृष्ण उवाच नहीं है, भगवान उवाच, ये आप देख रहे हो सामने, हरियंक कृष्ण जी ने बोली, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित मेरे प्राण होकर तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणों से संपन्न सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन, कहते तू मुझे अच्छी तरह समझ जाएगा, वो ज्ञान बताता हूं। 7वें देगा दूसरा श्लोक, मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12 पे, क्योंकि ताजा ताजा सिद्ध हुआ है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये याद रखना। अब ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, काल है, और ये कह रहा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सतोगुण यानी विष्णु से सती थी, और जो रजगुण से तथा तमगुण से, रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, तमोगुण से सहार शंकर जी से, तमगुण शंकर से सहार होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अपने आत्माओं, इस काल भगवान को 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर से निकले गंध को खाने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से इसने अपने तीनों पुत्रों को ये यहाँ की व्यवस्था दे रखी है कि ब्रह्मा जी रजोगुण है, जिसके प्रभाव से हम संतानों उत्पत्ति करते हैं सभी प्राणी विवश होकर के, जीव के बस की नहीं, और सतोगुण श्री विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में जकड़े हुए हैं, हमारे अंदर इतनी ममता भर रखी है हमारे बस का नहीं से दूर हो सके, और तीसरा जो संहार करता है शंकर भगवान, ये भी काल का पुत्र है। तो इन तीनों से ये कहता है कि जो रजगुण से होता है वो ब्रह्मा जी से उत्पत्ति और विष्णु जी से स्थिति और शिव जी से सहार जो कुछ भी हो रहा है, इसका नियमित कारण तो मैं ही हूं, पर मैं इनके सामने नहीं आता, इनसे अलग रहता हूं। अब आगे चलते देखिएगा, अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर आपने 12 पढ़ दिया, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं यानी सची थी, और रजोगुण जो ब्रह्मा से सृष्टि उत्पत्ति और तमोगुण शंकर से जो सहार होता है, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा ही जान, परंतु वास्तव में इनमें मैं और वे मुझ में नहीं है, इनसे बाहर है ये। अब 13 में कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से यानी इन्हीं के ऊपर आसक्त ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इन तक सीमित है ब्रह्मा विष्णु महेश तक, इन तीनों गुणों से रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये कहते हैं इनसे ऊपर हूं मैं, अलग हूं। अब आगे देखो, अब 14 में मैं कमाल कर दिया, श्लोक नंबर 14 सातवें अध्याय का, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल, ये बड़ी दुष्टर है, बड़ा खतरनाक है। जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया को ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं, यानी जो ब्रह्म से लाभ होता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के लाभ से अधिक स्वर्ग प्राप्ति होती है। अब यहां कहते हैं 15वें श्लोक में कमाल कर दिया, 7वें अध्याय के गीता जी में, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी रूपी इस त्रिगुणमयी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो केवल इन्हीं की भक्ति तक सीमित है, इनसे आगे किसी की सुनना नहीं चाहते, आसुर स्वभाव राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मूर्ख, माम ने परपदंते मुझको नहीं भजते, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति में लगे रहते हैं उनके बारे में क्या बता है कि असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे और तेरा जो वही हो, और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग, आत्माओं परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति, और गीता जी ने इनको क्या संज्ञा दे दी आपके समक्ष है, इस ब्रह्मा विष्णु रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के पुजारियों को, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, 4 गाली इकट्ठी दे रखी गीता जी में, दास नहीं कह रहा अपने सदग्रंथ कह रहे हैं जिनको हम श्रोधार्य मानते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ, श्रीमद् भगवत गीता में ये स्पष्ट हो गया। इन तीनों गुण की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, एवे नमे ओम श्री सतगुरुदेव एवे नमे, ये इस तरह के मनमुखी साधनाएं हैं, शास्त्र विधि के विरुद्ध है ये मंत्र। अब इसमें स्पष्ट हो गया है, परमात्मा ने कहा था तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदी ना हुआ मुक्ति। अरे पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ने स्पष्ट कर दिया कि इन तीनों देवताओं की भक्ति करते हैं वो है तो शास्त्र विरुद्ध है, और राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख ये ब्रह्म कहता है मेरी भक्ति भी ना करते। अब इनको ऐसा क्यों कहा? जैसे एक बार श्री ब्रह्मा रजगुण की भक्ति की थी अरण्यकश्यपु ने, रजगुण ब्रह्मा जी की, और सिद्धि प्राप्त करके भगवान बन बैठा, अपने ही पुत्र प्रह्लाद का शत्रु बन गया, और वो जुल्म गुजारे उस पुण्यात्मा के साथ, पिता होकर भी शर्म नहीं आई उस अहंकार के भूखे तीनों गुणों के उपासक ने, ऐसे जुल्म की राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया, भगवान ने आकर उसकी छाती पाड़ी पेट पाड़ के गिर दिया। अब तमोगुण भगवान शंकर की पूजा की थी रावण ने आपके समक्ष है, और जो वर्तमान के शिव के पुजारी एक सोमवार का व्रत रख के थोड़ी बहुत मंत्र माला करके ने सोचा पता नहीं क्या प्राप्ति कर लेंगे। अब रावण जैसी भक्ति वर्तमान का कोई भी नहीं कर सकता, यहां से धड़ काट के यहां से काट के दोनों भुजार से समर्पित कर दिया था, और जैसा किया वैसा ये दे सकते हैं भगवान, वैसा ही इसको दे दिया, लेकिन दुर्बुद्धि नहीं गई, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मारा गया, और कैसा दूषित कर्म किया, अपनी ही माता को सीता को उठा लाया जो शंकर भगवान के बड़े भाई की पत्नी थी, उसको उठा लाया, पत्नी बनाने की चेष्टा कर रहा था अपनी माँ को, इसे दुष्ट और कौन होगा, दूषित कर्म और क्या होगा, कुत्ते वाली मौत मारा गया और राक्षस कहलाया। एक बसमागिरी नाम का साधक था, तपस्वी था, तमोगुण श्री शिव का उपासक, और शिव जी के गेट के सामने मेन गेट के सामने ऊपर को पैर करके नीचे न सिर करके तपस्या करने लग गया। 12 वर्ष तक सिरासन पर रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि भगवान आप तो महादेव हो, देवताओं के देव हो, आप तो जो चाहो सो कर सकते हो, आपके भगत को दे दो जो मांगता है। अब भगवान शंकर ने कहा, शिव जी ने कहा तमोगुण ने कि मांग भाई भस्मागिरी, क्या मांगता है साधु? भस्मागिरी ने कहा जी वचनबद्ध हो जाओ तब मांगो। भगवान शिव ने कहा ठीक है भाई मैं वचनबद्ध हो गया, प्रतिज्ञा करता हूं तू मांगेगा वही दे दूंगा, वचन है मेरा। उसी समय सीधा खड़ा हो गया और कहने लगा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो जो आपने हाथ में पहन रखा है। उस भस्म कड़े में एक शक्ति थी, उसको मालूम था कि जिसके सिर के ऊपर ऐसे करके नू कह दिया कि भस्म, वो व्यक्ति वो पशु पक्षी भस्म हो जाता था। अब जो ही भगवान शंकर ने वचनबद्ध होने के कारण वो अपना प्रिय कड़ा भी दे दिया, ये सोचकर कि साधु संत है जंगल में रहता है, हिंसक पशुओं से बचने के लिए राक्षसों से बचने के लिए ले रहा होगा, दे दिया। जो ही कड़ा हाथ में आया और एकदम ठाके मारकर हंसने लगा कि शंकर होले होशियार, तुझे मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा, हा हा हा। अब उसने न्यू किया, शंकर भगवान जान गया कि तो एकदम चेंज हो गया सारा, इसका तो अव भाव बदल गया नीच का। भगवान शंकर ने डांक ठोक दी, फुल स्पीड तक भाग लिया, 100 की स्पीड तक आगे आगे भगवान, और पीछे पीछे पुजारी जा खखाट पटिया। तब परमात्मा ने आके रजा करी, उनके शंकर जी के और उस पुजारी के बीच में आकर पार्वती रूप बना के खड़े हो गए खुद परमात्मा। और वो तो पार्वती के लिए भाग ही रहा था, उसने सोचा चल दो बात कर लेता हूं, पार्वती से रुक गया। अपार्वती रूप में परमात्मा ने कहा कि आप रुक जाओ, क्यों भागे जा रहे हो, आओ बैठो दो बात करेंगे। अब शंकर जी तो आपके निकट आ नहीं सकता, 100 किलोमीटर तो उड़ा नहीं डटे भी हो। अब वो निश्चिंत होकर खड़ा हो गया। पार्वती रूप में प्रभु ने कहा कि मुझे कुछ डांस करके दिखा ताकि मेरा मन प्रसन्न हो, आपको पसंद करूं। वो कहने लगा मैंने नाचना तो ना आता, मैं साधु संत, मैंने तपस्या की है। तो पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि मैं सिखाती हूं तुझे, पहले डांस करके दिखा मुझे। इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इसको ऊपर ला, इसको नीचे कर। धीरे धीरे जिस हाथ में उसको कड़ा था वो सिर पर आ गया ना, उस बोली बूझ के जब कह दिया भस्म, वो भस्मा गिरी नष्ट हुआ। अब उस कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके परमात्मा शंकर भगवान के से काफी आगे खड़े हो गए और कहा कहा दौड़ रहे हो भोलेनाथ, कहा चले शंकर जी, कहा जा रहे हो कि भाग ले विष्णु भाग ले, पीछे एक दुष्ट आ रहा है, उसने मेरे से धोखा किया है। तब विष्णु रूप में प्रभु ने कहा कि देख यू तेरा कड़ा मैं ले आया, उससे भाग डरे मत, वो मैंने नाश मार दिया है। कि नहीं नहीं ये कोई और होगा, कि वही है, चिंता ना कर। दौड़ता दौड़ता पूछ रहा कैसे क्या कर दिया कि मैंने उसको ऐसे ऐसे पार्वती रूप बनाया, उसके सामने खड़ा हो गया, उसको गंड नाच नचा के और उसको ऐसे किया जब वो मार दिया। शंकर भगवान ने कहा मुझे उसकी वो ऐस दिखा दे, राख कहां सी जलया है, वो ल्या के दिखा लिया ना कि यो पड़ा उसकी राख। जब कलेजे की धड़कन बंद हुई भगवान शिव जी की, जिसको अविनाशी कहा करते, अजरो अमर मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर महेश्वर, बताओ ये थे हमारे टीचर हिंदू धर्म के, नकली गुरु मूर्ख बना रहे हमारे को हजारों वर्षों से। अपने आत्माओं ये तो दो गुणों के पुजारियों का निर्णय हो गया, किसे थे ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब भस्मा गिरी जैसा नीच कर्म कौन करेगा, भगवान की पत्नी पे और नीत खराब कर दिया अपनी मां पे, तो इसे दुष्ट गीता जी में कहा है राक्षस स्वभाव को धारण किए, भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस कहलाया, भस्मा गिरी से। अब सतोगुण श्री विष्णु जी के पुजारी वैष्णो धर्म वैष्णो साधु होते हैं। एक समय हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर एक कुंभ के पर्व की, कुंभ के मेले की, त्योहार की पर भी लगी, हर की पैड़ियों पर वो पर भी लगनी थी, वहां स्नान करना था। तो सभी ये षटदल बोले हैं ना, छह प्रकार के कुगिरी पुरी नागा सन्यासी वैष्णो नाथ, ये छठ दल कहलाते हैं। दल माने संख्या, अलग अलग ग्रुप, दल माने पूरा समूह। तो ये सब छठ दल अपने अपने स्थान पर अपने अपने डेरों में अपने अपने ग्रुप में, गिरियों में गिरी, पुरियों में पुरी, सन्यासियों में सन्यासी, नागाओं में नागा, वैष्णों में वैष्णो, साधु जाकर के अपने ग्रुप में वहां हरिद्वार में इकट्ठे हो गए। ये ऐसा ही करते हैं। और जब स्नान करने का समय आता है उस समय ये सभी चल पड़ते हैं अपने मुखिया के पीछे पीछे, अपने अपने अलग अलग गिरियों का मुखिया अलग होता है, पुरियों का अलग, सन्यासियों का अलग, वैष्णों का अलग, नागाओं का अलग। ये नागा और गिरी पुरी सन्यासी और ये नाथ, ये सारे तमोगुण शिव के उपासक, सतोगुण विष्णु के उपासक, वैष्णो साधु। पहले नागा पहुंच गया पूरा ग्रुप, कोई हजारों की संख्या में 50-60 हजार, और हर की पैड़ी पर नहाने के लिए पोजीशन पकड़ गए, पहले स्नान करने लगे, पीछे से आगे वैष्णो का समूह पूरा। वैष्णो ने आकर कहा कि हे सतोगुण वैष्णो, विष्णु के उपासकों ने कहा कि हे नागाओ तुम पहले स्नान मत करना, प्रथम हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी इच्छा रहते हैं, हम वस्त्र तक भी ग्रहण नहीं करते और हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णो साधु कहने लगे वो संत के तुम काहे के श्रेष्ठ हो, हैं? तुम नंगे फिरते हो पशु की तरह, राख लपेटे रहते हो, आज तुम नहाने वाले बन गए, शर्ट फड़ो टट्टी के हाथ भी ना धोते, तुम आज प्रथम स्नान करने पर तुल गए हो। अब इतनी बात से वो क्षुब्ध हो गए, कौन नागा भगवान भूल गए, वो कुंभ का मेला की पर भी भूल गए, उल्टे फेंक गए एकदम, और उसने उनके बाल पकड़ लिए, उसने उनके गुट्टम गुट्टा, फिर तलवार निकाल लाए, तीर मारे एक दूसरे के, पूरी छुरी घोंप दे एक, यानी बुड़के भर भर काट खाए, कतलेआम कर दिया 25,000 ये त्रिगुण उपासक कटका भर गए वहां हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर। होय होय। अब इसके विषय में सुख संवेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम दड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीश नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ओए होए, चार पंक्तियों में निर्णय दे दिया सुख संवेद में परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, के तीर तुपक तलवार कटारी और डट के लठ बजावे हैं, जम दड़ जोर बजावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, हर की पैड़ी कहे भगवान की छाती पे कतलेआम कर डाला, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना वहां जा तेग यानी तलवार चलावे हैं, और काटे शीश नहीं दल करुणा ये जग में साधक वावे हैं, इन्हें तुम संत भी कहती हो, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे, उन भी ये पाठ पढ़ाओगे ऐसे उनको बना देंगे, आज तक ये कैसा जुल्म करते रहे, हिंदू मुसलमानों को मार डालते हैं इन्हीं के बहकाए हुए, और मुसलमान हिंदुओं का काट डालते हैं उनका जी और मुल्लाओं के बहकाए हुए। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होंगे हमारी ऐसे ही ये हमारी दुर्बुद्धि बनाए रखते हैं, हमारा दुरुपयोग करते हैं ये मूर्ख लोग अपने स्वार्थ के वास्ते, ये गुरु। अब हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना वाजा तेग जलावे हैं, और काटे शीश नहीं दल करुणा, दया नींद के अंदर, अरे न साधु कहो तुम ये जग में साधक वावे हैं।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं।
सर क्या सुन नाम है आप जी का?
जी दास का, बहुदेव दास नाम है।
कहाँ से आए आप?
ग्राम मंडोरी, कस्बा नेहटोर के पास, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में पड़ता है, तहसील धामपुर।
सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे?
जी मैं पहले रविदास जी की भक्ति करता था, नामदान नहीं ले रखा था।
तो जो भक्ति आप रविदास जी की करते थे वो भक्ति कैसे करते थे आप?
जैसे एक दो वाणी किताब से याद कर रखी थी, ऐसे ही घर पे बैठ के उनका उच्चारण करता था।
तो जो वाणियां आप पढ़ते थे उनका उच्चारण करते थे, उससे आपको क्या लाभ मिलता था?
वैसे कोई किसी तरह का ऐसा लाभ तो नहीं मिल पाया भक्ति करने से।
परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए?
जी यहाँ तो मैं ऐसे अचानक आया कि एक रोज मैं टीवी का बटन खोल रहा था, अचानक ये चैनल पे जो गुरु महाराज जी का सत्संग चल रहा था, अचानक जैसे ही मैंने खोला तो ये सत्संग आ रहा था। मैंने शुरू में सत्संग सुना, तो सत्संग सुनते ही उसी दिन मेरी जो है बुद्धि कुछ दूसरी तरफ घूम गई, क्योंकि इस तरह के सत्संग सुनने की मेरी काफी दिनों से इच्छा बनती थी, लेकिन कहीं से किसी संत का भी इस तरह का कोई सत्संग सुन नहीं पा रहा था, नहीं मिल पा रहा था। अचानक मुझे उस रोज ये सत्संग मिल गया, और उसके बाद मैंने जो है हर रोज शाम को जैसे बिजली आती थी तो मैं अपने टीवी पे सत्संग सुनने के लिए जाता था। तो कई बार सत्संग सुना, सुनते सुनते फिर मैंने अपने मन में ये धारणा कर ली कि संसार में जो है अगर कोई ज्ञानी संत हैं तो ये है, नहीं तो संसार के अंदर कोई संत नहीं है। और मैं पिछले महीने जो है यहाँ आया और यहाँ आके जो है मैंने नामदान ले लिया।
सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला?
जी मुझे सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि जिस तरह की भक्ति के लिए मैं काफी समय से जो है परेशान था, घूमता फिरता था, धक्के खा रहा था, तो मुझे सबसे पहले तो ये यहाँ जो ज्ञान प्राप्त हुआ है ये अभी तक भी इतना भटकने के बाद भी कहीं से मिल नहीं पा रहा था। जिस तरह का ज्ञान यहाँ आके हुआ तो ये तो एक ऐसा ज्ञान है कि संसार में ऐसा ज्ञान किसी के पास था ही नहीं। और जगह भी मैंने जाने की प्रेरणा भी की और ये भी कोशिश की कि मैं कहीं से सत्संग भी ले लूं, लेकिन मुझे कहीं से भी जो है जच नहीं पाया कि कहीं पे ऐसी चीजें हैं जिस तरह की जो है इन सद्गुरु महाराज जी के ज्ञान से प्राप्त हुई। और मैं यहां से पहली बार जब आया था तो ज्ञान गंगा लेके गया था मैंने, मुझे एक महीना हो गया तब से मैं उस किताब को जैसे जैसे पढ़ता जा रहा हूं उसके अंदर से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो मैं तो इतना समझ रहा हूं कि पूरे संसार में भी अभी किसी भी संत ने या किसी भी ऋषि मुनि ने या जितने भी हमारे भगवान हुए हैं किसी ने भी इस तरह के ज्ञान को जो है इस तरह से सच्चाई के रूप में नहीं दर्शाया कि जिस तरह से हमारे प्रभु जी ने हमारे इन स्वयं भगवान जो प्रकट हुए हैं, मैं तो स्वयं भगवान मान के चल रहा हूं कि ये भारत में जो है यहाँ भगवान के रूप में ही प्रकट हुए हैं, भगवान ही हैं, नहीं तो ऐसा ज्ञान एक साधारण मनुष्य या ऋषि मुनि ने आज तक नहीं दे पाया और ना ही संभावना थी कि कोई इस तरह का ज्ञान यहाँ प्रदान कर देगा।
सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
मैं तो भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूं कि अभी भी समय है, जो भक्त नहीं समझ पा रहे हैं और गुमराह हो रहे हैं, कुछ दूसरे लोगों के चक्कर में जो है अपने को गुमराह समझ रहे हैं, अगर प्रभु की तरफ जाना है या प्रभु की प्राप्ति करनी है तो ये एक अनमोल मौका है कलयुग का, या आखिरी ऐसा वक्त है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जितने भी मनुष्य यहां आके अपना कल्याण करा लें, इससे बेहतरीन मौका आएगा नहीं, नहीं तो फिर 84 में आदमी चला जाएगा और पता नहीं बाद में दोबारा यहां प्रभु प्रकट हो भी या ना हो, कोई विश्वास नहीं है। भगत समाज से मेरी प्रार्थना है कि सतलोक आश्रम बरवाला में आए और संत शिरोमणि रामपाल जी महाराज से नामदान प्राप्त करें और अपना कल्याण कराएं।
धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्यों के विचार।
हमने सुना है चारों वेदों वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवद गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है, क्या आप इस बात से सहमत हैं और क्यों?
ऐसा है कि श्लोक है सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता युग्धम गीता मृतम महत समत उपनिषद गुरु है और उनको दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण है, अर्जुन बछड़ा है और गीता अमृत दूध है।
उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है?
उत्तम कहते हैं जो श्रेष्ठ हो और अनुत्तम उसको कहते हैं जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो।
गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं?
इसलिए कह रहे हैं कि उनकी साधना वेद प्रतिपाद्य है, तो वेद के अनुसार साधना करना सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं।
महाराज जी, मेरा अगला सवाल ये है कि गीता ज्ञान दाता, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अपने से किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, वो परमेश्वर कौन है?
कहाँ पर क्या कहा है?
गीता ज्ञान दाता, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में।
अच्छा, 18 में तो ये है कि ईश्वर सर्वभूतानाम, श्लोक बोल देते हैं, हृदय शीर्गण तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानाम हृदय शीर्गण तिष्ठति तमेव शरण गच्छ सर्वभावे न भारत तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्से शाश्वतम। इस श्लोक का उल्लेख कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर सब प्राणियों के हृदय देश में रहता है और उनको उनके कर्मानुसार भ्रमाता है। उस परमात्मा की सर्वभाव से आप शरण में जाइए, उसके प्रसाद से आपको परम शांति और शाश्वत स्थान प्राप्त होगा। ये कहने पर अर्जुन को संतोष नहीं हुआ, तो अर्जुन को भगवान ने बताया कि वो मैं ही हूं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
जी, श्रीमद् भागवत गीता 18 श्लोक 66 में ब्रज शब्द है, इसका अर्थ जाना प्रस्थान करना है, परंतु सर्व अनुवाद कर्ताओं ने ब्रज का अर्थ आना किया है, कृपया इसे स्पष्ट करें।
ऐसा है, ब्रज गतौ धातु है, तो ब्रज गतौ धातु के इसमें आता है गति अर्थक है। ये गति के चार अर्थ होते हैं, गति गमन, गति ज्ञान, गति मोक्ष, गति प्राप्ति। तो यहाँ पर जो गत्यर्थक ब्रज धातु है उसके लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में ब्रज बनता है, तो ब्रज का अर्थ है अवगच्छ, अर्थात मुझको जान। नैनम अभिजितो देवो भुनक्ति, ये सिद्धांत है कि जब तक परमात्मा को नहीं जान लेता तब तक परमात्मा उसकी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए तुम उस परमात्मा को जानो।
अभी आपने सुने शारदा द्वारका पीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार।
शंकराचार्य जी, हमने सुना है कि चारों वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है, क्या आप सहमत हैं?
तो महाभारत में ये लिखा है सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। वेदों का तात्पर्य, वेदों का जो शिरोभाग उपनिषद है उसमें सन्निहित है, उपनिषदों का मंथन करके श्रीमद् भगवद गीता की अभिव्यक्ति हुई है।
तो शंकराचार्य जी, उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है?
अच्छा, गीता में आया है अनुत्तम, मतलब जिसके समान और कोई उत्तम ना हो, उत्कर्ष उत्कृष्ट कर अर्ध्योतम।
तो शंकराचार्य जी, गीता के अध्याय 7 में और श्लोक 18 में गीता बोलने वाले श्री भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं?
अनुत्तम का अर्थ होता है सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट, अनुत्तम का अर्थ उत्तम रहित हीन वहां पर नहीं है, वो व्याकरण की दृष्टि से उसका अर्थ मैंने बता दिया।
तो शंकराचार्य जी, गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय के 18 अध्याय में श्लोक 62 में अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहे हैं?
अंतर्यामी के लिए शरणागति स्वीकार करने की बात कही गई। उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। इसका अर्थ क्या होता है? जो अंतर्यामी परमात्मा हैं, सबके नियामक हैं, प्रेरक हैं, हमारे आपके हृदय में भी जो विद्यमान हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश में भी रहकर उसका जो नियमन करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर इंद्रिय प्राण अंतःकरण के जो नियामक हैं, उस अंतर्यामी की शरणागति स्वीकार करने की बात भगवान ने कही, माम एकम शरणम व्रजा। वह जो अंतर्यामी पर ब्रह्म परमात्म तत्व है, सर्वेश्वर है, वही तुम्हारे सामने मैं श्री कृष्ण के रूप में प्रस्तुत हूँ। तो अपने से पृथक के प्रति नहीं भेजा, जिस अंतर्यामी के प्रति अर्जुन को कहा कि प्रपन्न हो जाओ, शरणागति प्राप्त करो, अंत में कहा कि उस अंतर्यामी का मूर्त रूप श्री कृष्ण में तुम्हारे सम्मुख हूँ, माम एकम शरणम रजा भी कहा। उस अंतर्यामी का और श्री कृष्ण ने अपना एकत्व भी स्थापित किया है।
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में व्रज शब्द है, इसका अर्थ जाना प्रस्थान करना है, परंतु सर्व अनुवादकर्ताओं ने व्रज का अर्थ आना किया है, कृपया स्पष्ट करने का प्रयत्न।
प्रश्न जिन्होंने बनाया है उन्होंने अपने स्तर से बताया कि सभी अनुवाद करने वालों ने ज्ञान के अतिरिक्त अर्थ किया है, ऐसी बात नहीं है। व्रज का अर्थ अवगच्छ निश्चिन्न भी होता है, जैसा कि प्रश्नकर्ता ने बताया। तो भगवत पाद शंकराचार्य जैसे मनीषियों ने, धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महान भाव जैसे मनीषियों ने उसका अर्थ यही किया है कि जैसे जल तरंग अपने को जल रूप समझ ले, घटाकाश अपने आप को महाकाश रूप समझ ले, और जैसे जलचंद्र अपने आप को नवचंद्र समझ ले, उसी प्रकार तुम देहेन्द्रीय प्राणांतकरण के अनुरूप अपनी आत्ममान्यता का परित्याग करके ब्रह्मानुरूप अपने आप को समझो, जानो, निश्चिन्न अवगच्छ, यह अर्थ भी टीकाकारों ने किया है। भगवत पाद शंकराचार्य और उनके अनुगत महानुभावों ने इसी प्रकार का उपदेश किया है, लेकिन जो श्री वैष्णवाचार्य इत्यादि हैं उन्होंने अपने स्तर से अपने प्रस्थान के अनुसार उस प्रकार का भी अर्थ किया है जिसका चित्रण प्रश्नकर्ता ने किया।
अभी आपने सुने आदरणीय पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज जी के विचार।
हमने सुना है कि चारों वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भागवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है, क्या अंतर लगता है आपको?
उत्तम जो उत्तम है जो श्रेष्ठ है, अनुत्तम जो उससे कम है वो अनुत्तम।
गीता जी अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है?
अपनी साधना को अनुत्तम तो नहीं कहा, साधना को अनुत्तम नहीं कहा गया, संत उत्तम ही है।
गीता ज्ञान दाता तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है?
तो अपने से अन्य होता है वहाँ जो उपासना में जहाँ देवता की उपासना होती है वो अपने से अन्य होता है, तो उसके उनके शरण में जाने की बात होता है।
अभी आपने सुने आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं श्रृंगेरी पीठाधीश्वर श्री भारती तीर्थ जी महाराज के विचार।
हमने सुना है कि चारों वेदों वाला ज्ञान ही श्री भगवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है, क्या आप इससे सहमत हैं?
हाँ ठीक, गीता तो उपनिषदों का सारभूत है।
उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है?
जो उत्तम है वो तो हमेशा सच्चे चरित्र वाला होता है, सच्चरित्र वाला होता है। अनुत्तम जो है उससे विपरीत होता है, अनुत्तम जिसका चरित्र सही नहीं वही अनुत्तम है।
गीता जी अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है?
अपनी साधना अनुत्तम शब्द का अर्थ आप समझे नहीं, वहाँ अनुत्तम शब्द का अर्थ है जिससे उत्तम नहीं हो वो। सामान्य रूप से अनुत्तम शब्द का अर्थ उत्तम से भिन्न, वहां का अनुत्तम शब्द का अर्थ है जिससे उत्तम और कोई नहीं हो वो है, इसलिए वहां अनुत्तम शब्द का अर्थ है सर्वोत्कृष्ट।
गीता ज्ञान दाता गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कह रहा है?
अपने से अन्य कोई नहीं भाई, भगवान वहाँ तो कहा, लेकिन भगवान ने कहा मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे परे और कुछ भी नहीं ऐसे कहा थे ना, इसीलिए वो ईश्वर भी वही भगवान ही है।
श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक के 66 में ब्रज शब्द है, ब्रज शब्द है जी, इसका अर्थ जाना अर्थात प्रस्थान करना है, परंतु अनुवादकर्ताओं ने ब्रज का अर्थ आना किया है, कृपया स्पष्ट करें।
ब्रज का जाना प्रस्थान करना वो तो मामूली अर्थ है, लेकिन संस्कृत के कुछ पदों को वहां के संदर्भानुसार अर्थ करना पड़ता है, इसलिए वहां के संदर्भानुसार ब्रज इसका अर्थ जो अनुवादकों ने किया है शरण में आओ वही तो सही है।
अभी आपने सुने पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्य के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार।
सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय, स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार, गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वस दे नहीं, सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। तो पुण्यात्माओं, आप जी को सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, क्या कारण रहा कि हमारे जो धर्म गुरु थे वो संस्कृत अवश्य जानते थे लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका, वे तत्व ज्ञानहीन थे और हैं अभी तक। हमारे धर्मगुरु कौन है? आचार्य शंकराचार्य और अन्य मंडलेश्वर, ये सब हमारे धर्मगुरु हैं। तो पुण्यात्माओं, तो ये तो बता दिया परमात्मा ने गुण तीनों की, भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार, निज नाम यानी सतनाम के बिना, उस सच्चे नाम बिना पार कैसे होगे। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है, सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने की इस तीन मंत्र की साधना करनी होगी। आठवें जाके 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम स्मरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति प्रमाम गतिम, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, जो इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है, जो ओम से मिलनी है, ओम से ब्रह्म लोक मिलेगा, ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी फिर वापस आते हैं आठवें अध्याय के 16वें श्लोक में, वहां पुनरावृत्ति के अंदर है। तो उसके पाने के लिए तो केवल एक तीन मंत्र का जाप, इसके अतिरिक्त जो भी जाप करते हैं शास्त्र विधि को त्याग कर वो मनमान आचरण है। फिर ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पाने की पूरी कंप्लीट वर्शिप, वे ऑफ वर्शिप तत्वदर्शी संत बताओगे, उससे पूछ लो तो वो बताएगा फिर सबकी कैसी पूजा नहीं करनी, पूजा होती है इष्ट रूप में मानकर पूजा करना होता है, साधना मजदूरी कोई अन्य होता है। अब ये तो हो गया कि तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो वह मुक्ति, 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने कहा था ये बातें, ये ज्ञान बताया था, और आज इसका समर्थन उन सदग्रंथों ने किया जिनको हम एथेंटिक मानते हैं। तो वो क्या थे जो हमने ज्ञान दिया करते, वो नकली गुरु आज तक मूर्ख बना रहे आपको। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 और 17 और 18 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म अपनी साधना करने वालों की विषय बताता है, कौन कौन करते हैं, अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी, अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु इनको रिजेक्ट करता है कि ये भी सही साधना नहीं करते, और ज्ञानी को सिलेक्ट किया है कि ज्ञानी आत्मा होती तो अच्छी है, ज्ञानी वो होता जिसको पता लगा कि केवल एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। वेदों में यही लिखा है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा, लेकिन ये भूल गए कि वेदों में यह भी लिखा था कि उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति वेदों में वर्णित नहीं है, उसको तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। लेकिन उन्होंने अपने निष्कर्ष निकाल लिया, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 से ओम नाम सिलेक्ट कर लिया पूर्ण परमात्मा का, जबकि वो 17वें श्लोक में 40वें अध्याय यजुर्वेद के खुद कह रहा है कि मेरा तो ओम ब्रह्म है, ओम मंत्र है मुझ ब्रह्म का, और वो तो परोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो ऊपर है। वह इनकी बुद्धि में ना बड़ी बात, क्योंकि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। जिस कारण से इन्होंने, इन ज्ञानियों को यह तो पता लग गया ज्ञान उपासना नहीं करनी, तीनों गुणों की पूजा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की भी नहीं करनी चाहिए, तो इन्होंने यह भी ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है, इसमें भगवान प्राप्ति साधना भक्ति नहीं हुई तो व्यर्थ है, इनको ज्ञानी कहते हैं। तो इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से गीता ज्ञानदाता कहता है 7वें अध्याय 18वें श्लोक में, ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी उदार है, लेकिन ये मेरे वाली अनुतम यानी घटिया अश्रेष्ठ गति में सचित है, ये मेरे वाली अनुतम गति में सचित है। कौन सी गति? 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है कि जो मुझ ब्रह्म के ओम नाम का जाप करते हैं, करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, मुझ ब्रह्म का जाप करता जाता हो, वो उसको परम गति होती है। कौन सी? ओम नाम से होने वाली परम गति। वो कहां? ब्रह्म लोक में जाता है। ब्रह्म 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा गीता जी में, ब्रह्म लोक पर्यंत भी जन्म मृत्यु में आते हैं, और गीता के अन्नदाता स्वयं कहता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में गीता जी में कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, दुन तो नहीं जानता मैं जानता हूं, फिर जब तक जन्म मृत्यु है। फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उसकी कृपा से ही। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से कोई और है सुप्रीम पावर जिससे पूर्ण मोक्ष होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आता, और केवल उसकी पूजा करो, अन्य की सब त्याग दो, अपनी पूजा को रिजेक्ट करता हो, पूजा माने इष्ट रूप में मानना। तो यहां इन अज्ञानियों से अनाड़ियों से कोई पूछता है कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को भी अनुतम क्यों बताता है? तो कहते हैं उसका अर्थ अनुतम नहीं, सर्वश्रेष्ठ मानो, जिससे उत्तम कोई और गति ना हो, जिसको प्राप्त हो जाता है उसके बाद और कुछ जानना शेष रहता, इसलिए इसको अनुतम, वो अनुतम गति है। मूर्ख बना रहे, 4थी कक्षा के बालक ने पूछ ले, अगर इससे अधिक अच्छी कोई श्रेष्ठ गति नहीं होती इनकी बात मान ले, तो ये 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कह रहा है कि उसकी शरण में जा, सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तो परम शांति को प्राप्त होगा।